मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, AFEIS के आज 2 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी सूरज पांचाल का, जो पश्चिमी दिल्ली से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग जो जीएसटी संग्रहण में वृद्धि की बात अखबारों में छपी है, न्यूज में भी आपने सुना है, उसको आधार बना करके अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बात करेंगे, या यूं कह लीजिए कि अर्थशास्त्र की तैयारी के बारे में कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज कोविड का दिन है, जो हम लोगों ने मंडे को खासकर बना रखा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि भारत को लगातार इसमें सफलता मिलती चली जा रही है, और मुझे लगता है कि हम सबको खासकर इस सफलता को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे स्वस्थ होने की दर है वो बहुत अच्छी हो गई है, 91.54%, जो बहुत बेहतर है। मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है, एक समय के बाद वो 1.5 के बाद लगभग आप यूं कह लीजिए कि स्थिर सी ही हो गई है, लेकिन अभी वो थोड़ी सी और बेहतर हुई है, यानी कि मृत्यु दर गिरी है, वो है 1.49%। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो संक्रमण की दर है वो काफी कम हो गई है, हम 8-9% तक पहुंच गए थे। मतलब अगर 100 लोगों का चेकअप किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, तो 8-9 लोग उसमें संक्रमित पाए गए हैं, जो अब घटकर लगभग 4 हो गई है, जो बहुत अच्छी है और पूरी दुनिया में बेहतर है। हमारे यहां केवल 10 लाख में से 88 लोग इसकी चपेट में आए हैं, मृत्यु हो रही है। लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष भी है, जो हम अब यूरोप और अमेरिका में देख रहे हैं, वहां सेकेंड वेव्स और थर्ड वेव्स की शुरुआत हो गई है, और वहां फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन आने लगी है, और ये जो वेव्स हैं, अभी जो संक्रमित दर है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा अधिक है। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर के बातें चल रही हैं, और उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में वैक्सीन आ जाए। भारत में भी वैक्सीन तैयार हो रही है, और यदि एक बार वैक्सीन आ गई तो डेफिनेटली इसको नियंत्रित करने में काफी कुछ मदद मिलेगी। तो भारत के सामने अभी जो चुनौती है वो यही है कि हम सेकेंड वेव्स से अपने आप को बचाएं, क्योंकि इसके जो एक्सपर्ट हैं वो साफ तौर पर अभी ये बात कह रहे हैं कि भारत में भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। हर्ड इम्यूनिटी जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जो एक घटना भी आपको अखबारों में काफी पढ़ने को मिल रही होगी वो फ्रांस को लेकर है। कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी कि फ्रांस में मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया गया, पैगंबर साहब का एक कार्टून बनाया गया था। खासकर इस्लाम में, चूंकि वो निर्गुण परंपरा का है, तो पैगंबर साहब के कार्टून को एक तरह से इस्लाम धर्म की अवहेलना मानी गई, एक अधार्मिक कृत्य माना गया, और उसके विरुद्ध जाकर के थोड़ी सी वहां हिंसात्मक घटनाएं हुई। पहले तो ये है कि जो एक टीचर थे, जो कार्टून दिखाने वाले जो शिक्षक थे, उनकी हत्या की गई, और इसके बाद फिर चर्च के बाहर 3 लोगों की हत्या की गई। और जब ये सब घटनाएं हुई तो डेफिनेटली पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, और जगह जो इस्लाम के जो समर्थक हैं वो फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। आप देखेंगे अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि भारत में भी फ्रांस की खासकर इस गतिविधि के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जब कार्टून बनाया गया तो जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने फिर अपनी बात कही। उन्होंने ये कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि इस तरह की बातें होनी चाहिए, कि पैगंबर साहब का कार्टून बनाया जाना चाहिए, लेकिन देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी भी रक्षा की जानी चाहिए, और जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है तो उसमें कार्टून का छपना भी शामिल है। तो इस तरीके से आप यूं कह लीजिए कि फ्रांस और जो कुछ इस्लामिक देश हैं वो बिल्कुल अभी आमने सामने एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं, और यहां तक कि जो कुछ इस्लामिक राष्ट्र हैं उन्होंने फ्रांस की वस्तुओं का बहिष्कार करने का भी बिल्कुल फैसला कर लिया, बिल्कुल बायकॉट का ऐलान कर दिया है। इनमें जो सबसे जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं आपके दिमाग में रहने चाहिए उसमें है टर्की, पाकिस्तान, कतर, बांग्लादेश और ईरान जैसे बड़े देश हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस का जो बहुत ज़्यादा व्यापार, काफ़ी कुछ व्यापार जो है ना इस्लामिक देशों के साथ होता है। अगर आप नक्शे में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि फ्रांस उधर स्पेन से सटा हुआ है और उसके बाद से ही फिर जो जॉर्डन वगैरह के जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनकी सरहदें शुरू हो जाती हैं। ये अभी स्थिति है, ये एक महत्वपूर्ण घटना है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। और खासकर आप देखते हैं कि किस तरह से आतंकवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो आतंकवाद को देखते हुए भी इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है, इस पर एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। आज खासकर इसी को आधार बना करके इस घटना को केंद्र में रखते हुए एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है शेखर गुप्ता जी का बिजनेस स्टैंडर्ड में, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसे आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद कुछ जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप उन्हें नोट भी कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि वो आपके काम की बातें होंगी। दो तीन पॉइंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ताकि आप इससे संबंधित अगर कभी किसी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप अपनी बात में थोड़े से तथ्य शामिल कर सकें। इस लिहाज से मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो इस्लाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यानी कि मानने वाले सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा मानने वाले जो है ईसाई धर्म को हैं और लगभग इस्लाम से 20% ज़्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वालों की कुल संख्या लगभग पूरी दुनिया में 2 अरब के आसपास और ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दूसरा है कि इसमें से 60% जो मुस्लिम आबादी है वो केवल एशिया में है और एशिया में जो देश हैं 4 देश जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है उनमें है भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, है ना। ये थोड़ा सा आपके ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि भारत में बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, तो आपकी जानकारी में ये तथ्य रहने चाहिए। तो दोस्तों ये आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें। बहुत तार्किक रूप से शेखर गुप्ता जी ने अपनी बात रखी है। अमेरिका के चुनाव के बारे में आप सब पढ़ ही रहे होंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उस बात की ओर ले जाना चाहूँगा कि जब भी आप अखबारों में अमेरिका के बाद चुनाव के बारे में पढ़ रहे थे तो आप देखिए कि उसमें भारतीयों की काफ़ी बात होती थी। दोनों राष्ट्रपति जो अभी आमने सामने हैं भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका की राजनीति में जो भारतवंशी हैं उनका काफ़ी कुछ दखल हो गया है। दोस्तों आप में एक चैप्टर है अप्रवासी भारतीय। अब वहां जो हमारे अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं वो अप्रवासी भारतीय हैं और आप देखिए कि कैसे जब उनके हाथ में ताकत आ रही है तो वहां की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति चाहे कोई भी बने वो अगर भारतीय मतदाताओं की उपेक्षा नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है कि वो भारत की भी उपेक्षा नहीं कर पाएगा और इसका सीधा सीधा सकारात्मक प्रभाव भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ेगा। हमारी विदेश नीति पर जो अमेरिका के प्रति होगी उस पर पड़ेगा और अमेरिका की जो विदेश नीति भारत के प्रति होगी उस पर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बस इस तथ्य की ओर मुझे ध्यान आकर्षित करना था। फ्रेंड्स आपने जीएसटी संग्रह के बारे में न्यूज में सुना भी है और अखबारों में भी पढ़ा है कि हमारा जो अभी इस जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है अक्टूबर में, अभी हम नवंबर में बात कर रहे हैं, राइट, तो कल आखिरी क्या मतलब 1 तारीख थी तो कल सारे डेटा आ गए कि जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ। तो जो कलेक्शन हुआ है याद रखिए वो किस महीने का हुआ है, आपको ये ध्यान रखना होगा जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है। फिर आपने देखा कि ये जो कलेक्शन हुआ है अक्टूबर महीने का कलेक्शन है और ये कलेक्शन 1,05,000 करोड़ रुपए के आसपास है। जो पिछले साल के अगर अक्टूबर महीने के कलेक्शन को देखें तो उसकी तुलना में 10% ज्यादा है। एक सिंपल सी खबर है, लेकिन क्या आपको इस खबर को बिल्कुल सिंपल तरीके से ही देखना चाहिए या इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए? दोस्तों यही अर्थशास्त्र और खासकर इस बार जो प्री का पेपर आया है उसको देखते हुए ये बहुत निहायत ही जरूरी हो गया है कि आप अर्थशास्त्र को बहुत व्यावहारिक स्तर पर समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। आपकी जगह अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ता, यानी कि जो न्यूज दी गई है उस न्यूज में और कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर न्यूज में लिखा गया है, न्यूज़पेपर में और लिखा भी गया है कि पावर सेक्टर में तेजी रही, बिजली की खपत बढ़ी। देखिए, जब बिजली की खपत बढ़ेगी, जब ईंधन की खपत बढ़ेगी, ईंधन की खपत भी बढ़ी है, तो सीधी सी बात है कि एनर्जी की खपत बढ़ रही है। तो एनर्जी का उपयोग कहां हो रहा है? तो आप ये मत कहिए कि घर में लोगों ने बल्ब ज्यादा जलाने शुरू कर दिए, उससे इतनी खपत नहीं बढ़ेगी। एनर्जी की खपत बढ़ रही है, इसका मतलब है कि औद्योगिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। औद्योगिक गतिविधियां तेज हो रही तो इसका क्या मतलब हुआ? आप कह सकते हैं कि भाई लॉकडाउन खुल गया है तो लोगों ने उत्पादन शुरू कर दिया, लेकिन क्या उत्पादन शुरू कर देने से ही औद्योगिक स्थिति बेहतर हो जाएगी? सीधी सी बात है कि औद्योगिक गतिविधियां तभी बढ़ेंगी, जो उद्योग हैं उत्पादन तभी शुरू करेंगे जब बाजार में मांग बढ़ेगी, डिमांड जनरेट होगी। फिर आप इसी न्यूज आइटम में पढ़ते हैं कि नहीं, डिमांड भी जनरेट हो गई है, खूब गाड़ियां बिक रही हैं, खूब टू व्हीलर्स बिक रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे हम FMCG कहते हैं, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG। तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या हुए, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके डिमांड में भी काफी कुछ वृद्धि हुई है, और इसमें वृद्धि होना बहुत बड़ी, आप यू कह लीजिए कि अच्छा, बहुत बड़ा संकेतक है, बहुत अच्छा संकेतक, बहुत बड़ी बात है। क्यों? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो बहुत तेजी के साथ मूव करती हैं, तेजी के साथ मूव करती हैं, मतलब ये पैक कर दिया जाए, इसमें चावल दाल नहीं होगा, है ना? चावल दाल भी कंज्यूमर गुड्स हैं और वो हमारी जरूरत होती है, लेकिन यहां जो FMCG जो कहा जाता है उसका मतलब है कि वो सामान, पैक्ड सामान होता है, पैकिंग होती है, और वो बहुत, उसका एक समय निर्धारित होता है कि इतने समय में ये यूज कर लिया जाना चाहिए, और लोग उसको खरीदते हैं, खत्म होता है, खरीदते हैं, खत्म होता है, तो इसीलिए जब इसका उत्पादन किया जाता है तो बहुत तेजी के साथ उसकी बिक्री भी होती है। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, भी FMCG ही है, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, यानी कि ऐसा सामान जो कंज्यूम होता है लेकिन पैक्ड कर दिया जाता है। अब ऐसे सामान कौन सा होगा? जैसे आपका साबुन है, प्रसाधन सामग्रियां हैं, श्रृंगार प्रसाधन जिसे आप कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, आजकल बहुत से ऐसे भोजन और ऐसी चीजें आ गए हैं जो पैकेट में आती हैं, तो ये सब के सब FMCG हैं। तो अगर इन वस्तुओं की बिक्री बढ़ी है तो इसका मतलब है कि वास्तव में बाजार में बहुत ही जेन्युइन डिमांड क्रिएट हो गई है। तो जेन्युइन डिमांड क्रिएट हो गई है, इसका मतलब है कि बहुत राहत की बात है कि अब हमारी, हम जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, अब एक छोटी सी बात थी, छोटी सी घटना थी टैक्स कलेक्शन की, लेकिन जब आप इसे इत्मीनान से पढ़ते हैं, इस पर विचार करने की कोशिश करते हैं, तब आपको कितनी सारी बातें और पता लग जाती हैं। क्योंकि सरकार को जो टैक्स मिला है वो हवा में तो टैक्स मिला नहीं है, चीजें बिकी होंगी तभी तो टैक्स मिला है। अब चीजें बिकी होंगी एक बात है, लेकिन वो कौन सी चीजें बिकी होंगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आपको अखबारों में ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इस्पात की बिक्री बढ़ी है, सीमेंट की बिक्री बढ़ी है, वहां टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। तो ये तो बिल्कुल फाउंडेशन है उद्योग के, इसका मतलब है कि जो विनिर्माण उद्योग है उसमें भी धीरे धीरे हलचल होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब अंगड़ाई लेकर के खड़ी हो गई है और दौड़ने के प्रतीक्षा कर रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से इकोनॉमिक्स की तैयारी की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है आशुतोष सिंह, अंकित राज मुंबई से, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शरीफ, सुजल कुमार राजकोट गुजरात से, और बिन्नी कुमारी सारणी बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।